कि आप सबको पता है हिस्ट्री के हिसाब से चंपत राय जी 2.5 साल के ही छत्रसाल जी थे जब उनकी मृत्यु हो गई थी। और वो मरे भी कैसे थे, उनकी पत्नी ने अपने हाथ से छुरा घोंपा था। बड़ी दर्द भरी कहानी है, क्योंकि महाराजा छत्रसाल जी के पिता चंपत राय जी मुगलों की फौज में घिर गए थे। और अब जब उनको बचने की कोई उम्मीद नहीं रही, अपनी पत्नी सारंगा, छत्रसाल जी की माता का नाम सारंगा है, कहा कि सारंगा तूने मेरे जीवन साथी बन के मेरे ऊपर सब कुछ कुर्बान किया है, एक कृपा मरते समय और कर दे। मैं बच तो सकता नहीं, तूने देख लिया है मैं गिर गया हूं, कोई रास्ता नहीं है, एक कृपा करके कम से कम मेरे शरीर दुष्टों के हाथों से न मर, तलवार ले, हिम्मत कर, मेरे पर आखिरी एहसान कर दे, मेरी गर्दन काट दे। कहने लगी तो फिर मैं, कहने लगे छत्रसाल को पीठ पे बांध, बंगन नहीं है तू, राजपूत नहीं है, ये छोटी सी नदी पड़ती है, कूद जाए इसके ऊपर और चंपत राय के पास बल दीवान के साथ पास भाग जाना, तो फिक्र ना कर डूबेगी नहीं। सारंगा ने अपने हाथ से बल उनके जो है चंपत राय जी का सिर काट दिया, अपने पति का, है कहीं इतिहास में ऐसी चीज। अब नदी कुछ ऐसी चौड़ी नाला था कि आदमी तो हिम्मत करके पार कर जाए, एक बच्चा पीठ पर बांध रखा है, छत्रसाल जी केवल 2.5 साल के थे, उनको कस के जो है पीछे से बांध लिया, अब कूदना है बच्चे के साथ, अकेला तो आदमी फिर कूदने का साहस करता है और रात है। तो राज जी ने क्या दृश्य दिखाया कि एक न्योले का बच्चा, न्योला जो होता है उसके मुंह में 5 अशरफियां थी, वो अशरफियां ला करके उनके सामने रख गया और उसके सामने उसने जो है उसको कूदा, उस नदी को कूद के पार कर गया। वो 5 अशरफियां सरंगा ने उठाई और सोचने लगी कि अगर ये जीव छोटा सा चूहा कूद सकता है तो क्या मैं इससे भी गई गुजरी हूं। बस दूर से आकर के जैसे आदमी कूद करके पार नदी को करता है, मारी छलांग अपने उस मालिक को याद करके सरंगा पार हो गई। और उस दिन से छत्रसाल जी को पालने वाले बल दीवान थे और इतने लाड से शायद अपनी संतान को ना उन्होंने पाला होगा जिस लाड और प्यार के साथ छत्रसाल जी को पाला था। लेकिन उस दिन ये बात सुन ली कि इन्होंने गुरु भी धारण कर लिया है और उनका जूठा प्रसाद खा लिया है, इसने नाक काट दी हमारे वंश की, खानदान की, इसलिए जो है बस बहुत ऐसे अपशब्द कह दिए कि जो छोटा सा कमजोर दिल वाला आदमी हो शायद वो डर के कह देता कि अच्छा चाचा आज तो गलती हो गई, क्षमा कर दो, दोबारा मैं इनके पास नहीं जाऊंगा। लेकिन छत्रसाल जी क्या कहते हैं कि चाचा जिसको तू गुरु और एक आदमी समझ रहा है तेरी समझ में अभी नहीं बात आई, बाकी रही तेरी लोक लाज मर्यादा खानदान और राजपाट की, ये धरी तेरी चाबियां, मऊ के खजाने की ये धरी तेरी चाबियां, और आज से तेरे खानदान से मैं बाहर, मुझे तू नीच समझ, भंगी समझ, मैं बुंदेला आज से नहीं हूं, मेरी आज से लोक लाज मर्यादा टूट चुकी, मुझे मेरे प्राणनाथ मिल गए, मुझे प्रीतम पार ब्रह्म मिल गए, मुझे दुनिया की लोक लाजों से अब मतलब क्या है, ज्यादा बोल करके अपने को कल्पाना है कल्पा लो, बजाय गिरने के छत्रसाल जी के दिल में और दृढ़ता आई। और अब छत्रसाल जी महाराज स्वामी जी को देखते हैं कि जंगल बियाबान में पड़े हैं, उस दिन से तुरंत अपनी शक्ति अनुसार बंगला साहब, जो सुंदर साहब पन्ना जी जा चुके हैं लगभग सब गए होंगे, और जो नहीं गए वो इस साल तैयार हो जाओ चलने के लिए, राज्य ने मौका सबके लिए बना दिया है, बंगला साहब कच्ची दीवारों से बनवाना शुरू करवा दिया, क्योंकि उस समय एकदम राजा छत्रसाल जी के पास कोई इतना धन संपत्ति तो था नहीं, जंगलों में जो छुपे फिरते थे बेचारे, तो बंगला उधर बनवाना शुरू कर दिया। तो उससे पहले मैं अपने घर ले जाऊं तो सुखपाल बनाया सुखपाल, जिसको आप लोग डोली कहते हैं, डोली में बहुएं जाया करती थी, वैसा सुखपाल बनाकर महाराजा छत्रसाल जी के पास वजीर भी हैं, बड़े बड़े राजपूत भी हैं, राठौर भी हैं, लेकिन सेवा किराए के नौकरों से नहीं होती, सेवा दिल के भाव से होती है। एक तरफ छत्रसाल जी खुद लगे और बाकी तीन तरफ तीनों रानियां, ठाकुरायन, साफ वाणी में लिखा है, अभी आप सुनिएगा, पालकी को नंगे पांव उठा करके कहां पुल है और कहां चौपड़ा जी की हवेली। अब तो फिर जाते आते सुंदरसाथ के रास्ता हो गया है, और उस समय स्वाय जंगल के और कोई पत्थरों के बिना कुछ रास्ता ही नहीं था। सुखपाल ला करके अमराई घाट रखा और स्वामी जी को, महारानी जी को, जुगल स्वरूप को बिठा करके कंधों पर चारों जने, सब राजपूत साथ हैं, मिलिट्री साथ है, बैंड साथ है, करना इनको तुम नहीं उठा सकते। किस लिए? क्योंकि ये कौन है, इनके प्रति तुम्हारे दिल में भाव है ही नहीं। तुम तो ना करो, कहीं जाते हुए कंकर पत्थर लग जाएगा तो क्या सोचोगे, महाराज छत्रसाल जी ने अच्छी मुसीबत में डाल दिया, पांव ही छिल गए, छाले ही पड़ गए। नहीं, हम खुद लेके जाएंगे। अब सुखपाल ले गए और चोपड़ा जी का जो मंदिर है उसके गेट पर जाकर के रखा, तो छत्रसाल जी खुशी में इतना मगन हो गए कि जीवन सफल हो गया। मतलब इतने से कि मेरा जीवन आशकार्ष हो गया, धन हो गया कि मेरे घर उनके चरण कमल आए हैं। अब इतने में स्वामी जी पालकी से उतर के चरण कमल रखा नीचे। जब चरण कमल रखा नीचे तो मंझली रानी छत्रसाल जी के सामने थी और दो रानियां पीछे थी, देवकुर्णी और वो। अब मंझली रानी ने देखा कि चरण कमल बिल्कुल मिट्टी पर रखे, तो मर गए हम, अब करूं तो क्या करूं। अगर महलों में भाग करके जाती हूं तो इतनी देर में तो अंदर चले जाएंगे। और वही चीज उसको बचा गई कि चार दुपट्टे पहन, एक साड़ी, फिर एक महारानियों वाला शाल, एक दूसरा शाल, एक रंगीली गुलाबी रंग की सुहागिन नार जो होती है वो दुपट्टा राजपूतों में अवश्य पहनती है। चार कपड़े थे, इस वास्ते उन्होंने क्या किया, नीचे वाला जो लंबा शाल था ना बड़ा, उसको कर लिया ऐसे नीचे, किसी को पता ही नहीं लगने दिया, और बिल्कुल पांव तक जैसे साड़ी बांधते हैं उसको ऐसी कमर में लपेट लिया और नीचे वाली साड़ी खोल ली। किसी को चरण का भी अंगूठा भी नहीं महारानी जी का दिखाई दिया, और उन्होंने स्वामी जी के चरणों में अपनी साड़ी का पावड़ा बिछा दिया। अब क्या होता है जरा ध्यान के साथ सुनिए। अब जो है कलयुग जो था, माया जो है वो लगी कांपने के लिए, भाई अब मैं मरी। आगे तो था एक और, अब कितने हो गए? हाँ दो ही कहोगे तुम, एक और एक कितने होते हैं, मैं दो ना गिनना, लिखो एक और एक पढ़ो कितने हो गए, 11 हो गए। ओ कुली ओ, लिखा तो ठीक है, आप जो पढ़ रहे हैं पढ़ थोड़े गलत, मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि आप गलत पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब कि कलयुग था वो थर थराने लगा कि मैं एक प्राणा जी को तो संभाल नहीं सकी, और ये छत्रसाल जिसने पहली बार ही लोक लाज मर्यादा सब कुछ उठा के खूंटी पे धर दी है, ये साथ मिल गया तो मैं बच्चों की कहां, अब मैं करूं तो क्या करूं, फड़ फड़ाई इधर उधर भागी जागी। तो कलयुग जो है वो कहां आके बैठता है, जिसका दिल का ईमान कच्चा होता है उसी को जगह मिलेगी वहां पर, और जिसका ईमान ही मर मिटने वाला है, मर मिटेंगे कोई दुनिया में नहीं, वहां क्या आके माया करेगी। अब उस वो कौन था, बलदीवान एक बतेरा है, उसी के दिल में बेईमानी आ जाती है। अब छत्रसाल जी आगे क्या करते हैं,
भगाओगे महाराज को,
ये तो हो गया प्रसंग, हो गया, पढ़िए पढ़िए। महाराजा छत्रसाल जी को जब प्रसाद लिया था डिगाने के वास्ते, बहुत जो है चंपतराय उन्होंने जो है बलदीवान ने डराया, और दजाल ने बड़ा शोर मचाया, लेकिन स्वामी जी की तरफ से जो है छत्रसाल जी का ईमान गिरा नहीं, बिल्कुल खुशहाल होकर के क्या है चाचा पाचा सो आए और मरे और चले, बिल्कुल राज्य मराय के पास यकीन पक्का ले करके इतना भी ईमान से पीछे नहीं हटे। 1740 का था, जा पन्ना जी में पधारे। आप महाराजा छतर साहब जी ने जो सेवा की है, आप स्वामी जी कहते हैं सुंदर साहब जी, वो सेवा जो होती है ना किसी की केयर करी हुई, वो कहीं नहीं जाती, क्योंकि सेवा होती ही तब है जब दिल में भाव आ जाए। और भाव कब आते हैं? जब स्वरूप की पहचान होगी। अब जो पहचान छतर साल जी ने कर ली है, उनके समान अब सेवा कौन कर सकता है? स्वामी जी साफ कहते हैं कि जब से दुनिया बनी है, बड़े बड़े गुरु भी हुए, तीर्थंकर भी हुए। गुरु द्रोणाचार्य को एकलव्य ने अंगूठा भी निकाल के दिया था। शिवाजी ने महाराजा अपने जो है गुरु समर्थ रामदास जी के फोड़े के जख्म का जो नीचे आम था वो भी चूसा था। बड़ों बड़ों ने हीरे जवाहरात रख करके अपने गुरुओं को दक्षिणा रखी, लेकिन छतर साल जी ने जो दक्षिणा स्वामी जी के चरणों में रखी, उसकी तुलना के समान जब से सृष्टि बनी है ना तो कोई कर सका है और ना ही कोई कर सकेगा। आप स्वामी जी कहते हैं जिस जिसने आज दिन तक अपने गुरुओं की सेवा करने के लिए दक्षिणाएं रखी हैं, पगले भरे यानी काम किया है, उनके वास्ते वैसा ही ग्रंथों में लिखा है। अब स्वामी जी कहते हैं छतर साल जी भी जो कर रहे हैं, इनको तुलना करके देख लेना तो सब बाकी आपको 00 नंबर वाले ही नजर आएंगे, क्योंकि ये कौन है? ये दुनिया का शिष्य नहीं, ये खास गिरोह परम धाम के अर्श अजीम वाले जो अपने धनी पर फिदा होके कुर्बानी कर सकते हैं, वो दुनिया के जीवड़े क्या करेंगे। अब चौपड़े की हवेली में चलो, अब कांधे पर उठा करके महाराज अक्षतर साल जी और कुमरनिया लेकर के जाती हैं। सुखपाल जाके जब दरवाजे पे रखी और बहुत महाराजा अक्षतर साल जी इसी में अश्रंग खुशी पागल हो जाते हैं। आप जो स्वामी जी जब पालक सुखपाल धर दिया तो अंदर ही चलना था, उठ करके चरण कमल जब नीचे रखा, बस जब लगे चलने तो छतर साल जी को तो ये होश ही नहीं रही कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मजली रानी ने ये देखा कि स्वामी जी के चरण कमल मिट्टी पर रखे जा रहे हैं, दिल में बड़ा प्रेम और भाव लेकर के महाराज ने क्या कहा? तो फिर फिर पावड़े बिछाओ ना, फिर छोड़ क्यों रहे हो? उधर आ करके मजरी रानी ने तुरंत जो है पता नहीं चलने दिया और साड़ी जो है बिछा करके चरण कमलों में पावड़ा किया, साड़ी का जो है पावड़ा किया। अब जब साड़ी बिछा दी, अब छतर साल जी को एकदम वो हुआ कि ओहो ये तो काम गड़बड़ हो गया। इसलिए नहीं कि भी साड़ी बिछाई है कि हमारी बेइज्जती हो गई ना, कहना देख मजली रानी तेरे भी धनी है और मेरे भी धनी है, तेरा हक बराबर है, लेकिन मैं तेरे शरीर का पति हूं ना, इतना इस हिसाब से मेरा हक पहले बनता लोक लाज से, वैसे नहीं क्योंकि तूने पहले कर लिया, तेरी जीत हो गई, अब तू मेरी लाज इससे ही रख ले कि पहला नंबर मेरा लगा ले, क्योंकि मेरी नाक कटेगी इससे। तब अपने हाथ से वो साड़ी उठाई, उसने मजली रानी कहती है राजी महाराज, इससे तो अगर मैं मर्द होती और मैं पगड़ी बिछाती तो ये मेरे भाव तो ना। अच्छा चलो धनी, आपने नहीं मेरी सेवा स्वीकार की, दिल तो होता ही है भाव, जैसे जो चीज की जाए ठुकरा दी जाए, आदमी तो जो चाहेगा वो औरत करेगी, उसकी क्या मजाल हो सकती है। वो साड़ी छतर साल जी ने उठा दी और अपनी पगड़ी, राजपूत होके पगड़ी उतारना बहुत मौत का खेल होता है, पगड़ी जो है स्वामी जी के चरणों में जब बिछा दी, और स्वामी जी ने सोचा मजली रानी की तरफ देखा, दिल तो उसका जो है चेहरा उदास हो गया, पर बड़े मेहरबान है धनी, आप देखते हो बाहर के गेट से जब अंदर ये जो मंदिर बना हुआ है बिल्कुल ये वही जगह है जहां स्वामी जी साक्षात आकर के विराजमान हुए थे। अब इतनी पगड़ी कौन बांधता होगा 20 गज की, जब पगड़ी बिछाई लेकिन फिर भी सिंहासन और उसके बीच में जगह बच गई, तब स्वामी जी छतर साल को अपने मुखवार बिंदु से कहते हैं छतर साल जो साड़ी उठाई थी ना बिछा भाई, वही साड़ी बिछा, उसकी तरफ देख कितना उसका दिल उदास हो रहा है। तब कह कवा करके वो साड़ी बिछाई, अब उसने कहा शुक्र है राजी महाराज, मेरी भी सेवा राजी ने स्वीकार कर ली, खूब प्रसन्न हो गए मजली रानी। तब स्वामी जी आकर के सिंहासन पे विराजमान हुए, और अपना पन तन, अब इधर क्या हो गया, गजाल तो साथ साथ चलना है। पहुंच गए चमचे किसके, बलदेवन के। कहने लगे चाचा आगे तो गुरु ही बनाया था, प्रसाद ही किया था, अब तो बिल्कुल सत्या नाश हो गया। जब औरत की साड़ी ही उतर के बिछ गई और छत्रसाल ने अपनी पगड़ी ही उतार दी, अब कहे कि हम राजपूत, अब तो हम भंगी हो गए। अब आप जानते हो ऐसी बात जो होती है लोगों को बड़ी स्वादी लगती, चावल पटवा रही उन्हें चुकते उन्हें पटते उन्हें चलाते उन्हें करा। अब सबके कानों में बजाय किसी और बात के साड़ी उन्होंने भूसरी कर दी। छत्रसाल जी ने अच्छा नहीं किया, मैं खानदान के बड़े हैं तो क्या हुआ, राजा हुआ तो क्या हुआ, राजा होने का ये मतलब थोड़ा है कि खानदान की नाक काट दें, ये कर दें, वो कर दें, फलाना कर दें। महाराजा छत्रसाल जी के को कान बहरे तो थे नहीं, उन्होंने तो तैयारी कर रखी है थाल के अंदर पूजन करने के वास्ते, क्योंकि जब पधारे हैं तो क्या करना है, चरण धोएंगे, पूजन करेंगे, आरती करेंगे। लेकिन चारों तरफ से आवाज किसकी आ रही है, साड़ी और पगड़ी, साड़ी और पगड़ी। छत्रसाल जी ने सोचा भी आरती तो करेंगे बाद में, पहले मैं इनकी साड़ी पगड़ी ठीक कर लूं। वो छोड़ के और सारी जनता, वजीर बुजरा, राजपूत, चाचा बलदीवान सब खड़े हुए थे, हाथ जोड़ करके अर्जी की। छत्रसाल जी ने कहा कि पूज्य चाचा साहब और बिराजी के लोगों, खानदान व बड़े बड़े वजीरों, कृपा करके तशरीफ नीचे रखो, मैं कुछ कहना चाहता। राजा के कहने की देरी थी, सब लोग बैठ गए। अब ध्यान के साथ कहते हैं कि तुमने समझा होगा कि शायद ये मेरे घर गुरु आया है और मैं इनका चेला, और ये साड़ी बिछाई है, तुमने सोचा होगा कि बुंदेलखंड की शायद इज्जत उतर गई, और मैंने जो पगड़ी उतार दी तो तुमने सोचा होगा कि अब तो हमारा कुछ बाकी दुनिया में, जब राजा ने पगड़ी उतार दी तो बाकी किसका कुछ रह गया। तो आज कान खोल करके सुन लो पहले कि ये हैं कौन जो मेरे घर आए, जिनको मैं महारानियों के कंधों पर उठवा के लाया हूं, ये कौन हैं और मैं किनको कंधों पर उठा के लाया हूं, आज सुन लो। ना तो ये मेरे गुरु हैं और ना मैं इनका चेला हूं, ना ये मेरे भगवान हैं और ना मैं इनका भगत हूं। अब दुनिया में दो ही तो रिश्ते हैं, और सारी दुनिया हैरान, भाई ना तो ये भगवान मान रहा है और ना अपने को भगत कह रहे हैं, ना इनको गुरु कह रहे हैं ना अपने को चेला कह रहे हैं, तो है कौन जो इनके घर आया है। कहने लगे आप ध्यान से सुनो, ये है कौन, पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे। ये छत्रसाल जी ने वहां बोल करके सारी पब्लिक को समझाया कि तुम्हारे घर भगवान आ जाए तो क्या करोगे, मैंने जो कुछ किया है इससे भी शायद ज्यादा करोगे, लेकिन ये भगवान ब्रह्म जो दुनिया के देवी देवता राम इत्यादि हैं, ये वो नहीं, ये ईश्वरों के ईश, ब्रह्म से न्यारे, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद जो हैं, ये वो मेरे घर आए। और तुम सोचते होगे कि शिव सन कादिक आदि के इंचत शेष न पावे पार, कौन है ये जिनको शिव सनकादक ब्रह्मा के चारों पुत्र और ब्रह्मा वेदों में नेति नेति कर चुके, और जब से सृष्टि बनी है करोड़ों वर्षों से इसी की तपस्या करते हैं, लेकिन उनको आज दिन तक प्राप्त नहीं हुए। ऋषि मुनि इन्हीं को याद करते हैं पर इनको प्राप्त नहीं हुए। शिव सनकादिक आदि की इंचत शेष न पावे पार, और ब्रह्मा जी ने भी खोजा इस दावे को लेकर के सारी ऋषियों की सभा में बैठ करके कि मैं खोज के लाऊंगा, दावा भरा कि मुझे पार ब्रह्म का पता है, पर अगम जान के निगम कहावे खोज खोज पची हरे। अब ऐ मेरे प्यारो रिश्तेदारों और पब्लिक वालों, तुम सोचोगे कि जिस पार ब्रह्म अक्षातीत को आदि निरय नहीं पा सके, तपस्या कर करके नहीं पा सके, शेष नारायण नहीं जिसको पा सका, शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर तपस्या कर करके थक के जिसको नहीं पा सके, ब्रह्मा ने इतना दावा किया और हार के नेति नेति करके खोज खोज पची हार के बैठ के कह दिए भाई अगम अगम निगम निगम हमें कुछ पता नहीं, और उसको मैंने कभी भी याद किया नहीं। तुमने मुझे कभी माला लेकर के पार ब्रह्म का नाम सुमरण करते हुए देखा नहीं, तो तुम क्वेश्चन करोगे, मेरे ऊपर सवाल करोगे कि वो पार ब्रह्म क्षाति तो बिन बुलाए तेरे घर कैसे आ गए? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश शेषाय नारायण इत्यादि सारे देवी देवता जब से सृष्टि बनती है तभी से पार ब्रह्म की खोज में आराधना में तपस्या में बैठे हुए लगते हैं, उनको प्राप्त होते नहीं, और तूने कभी याद ही नहीं किया, और वो चल के खुद तेरे घर आ गए क्या? कह लगे हाँ, इसलिए आ गए हैं कि इनका जो रिश्ता मेरे साथ है वो रिश्ता किसी के साथ है नहीं है, ये मेरी आत्म जो परम धाम से आई है, ये मेरी आत्मा के धाम के धनी है और मैं उनकी अंगना हूं, पत्नी हूं। तो प्रश्न करते हैं चतुर्साल जी, बोलो दुल्हा दुल्हन को लेने जाता है कि दुल्हन बरात लेके दुल्हा को लेने जाती है? बोलो भाई, दुल्हा ही तो बरात लेके जाता है किसके घर? दुल्हन के घर। दुल्हन तो कभी बरात लेके दुल्हा को लेने नहीं गई, ये मेरे धाम के दुल्हा है। और ये जो सारे साथ है ना सुंदर साथ, ये कौन है? ये इनके बराती हैं। फिर ये अकेले नहीं आए, सबाला भी साथ आया है। सबाला कौन है? श्यामा जी महारानी है। और ये मेरे घर कैसे आए हैं? जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए हमारे। और साथ किसको लाए हैं? सबाले को, गुआ, क्योंकि सवाला 24 घंटे साथ रहता है, हर चीज की उसको जानकारी होती है। श्री ठकुरानी जी, श्री ठकुरानी जी कौन है? श्यामा महारानी। सखियों ने सोधावर, सोधावर मैंने ढूंढने के लिए, उनको इन्होंने साथ लिया है कि चल तुम हमें ढूंढ करके लावे, जाए बुलाओ रूअल्ला रूहे मेरी जो आशक, रबद किया इश्क वास्ते कहियो बुलाया हक। इस वास्ते जो है इनको साथ लेकर के ये एक एक आत्म को ढूंढने के लिए सारे देश में घूम रहे हैं। और मैं इनकी एक औरत, मेरी आत्म अंगना जो है वो यहाँ जंगलों में पड़ी तड़प रही थी, अब किसी की मानो गढ़वाल में सगाई हो जाए तो बरात कहाँ जाएगी? बोलो भाई, गढ़वाल जाएगी। जब सगाई वहां हो जाए तो बरात जाएगी जाएगी। कहना कि मैं इनकी एक अंगना यहाँ पहाड़ियों में पड़ी हुई थी, तो वो धाम का दूल्हा बरात को लेकर के परम धाम के नाते से, शरीर से मेरा कोई नाता नहीं, मैं इनका भक्त नहीं है, भगवान नहीं है, मेरे धाम के दूल्हा हैं, जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए हमारे। श्री ठकुरानी जी सखियों ने सोधा भर, और ये जो है ना ये सुभान है, हमारी आत्माओं के प्रधान हैं, इसलिए इनको साथ रखा है ढूंढने के, सोधना मैंने ढूंढने के लिए। श्री ठकुरानी जी सखियों ने सोधा वर लई ने संग पधारे, इसलिए इनको साथ लेकर के मेरे घर आए हैं। अब पार में मक्षातीत क्यों दुनिया में आए हैं कि त्रैगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वारे, अगर ये फंदा निर्वारा नहीं करते तो ये अक्षरा तीत ही नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जब पार ब्रह्मक्षातीत आएगा वो दुनिया के त्रैगुण फंद कर्म कांड को हटा के सारे मानव को एक करके भवसागर से पार करेगा, इसलिए त्रैगुण फांस के, वो त्रैगुण फांस क्या है? खानदान, लोक लाजे, बिरादरी वास्ते, अणा वास्ते, ये जब आ गया खानदान पार ब्रह्मक्षातीत आ गए, तो मैं अब खानदान मेरा काहे का, कौन मेरा खानदान, कैसा मेरा खानदान? ब्याह के बाद दुल्हन का खानदान ससुराल होता है कि मायका ससुराल? इस वास्ते मेरा दुल्हा जो मेरे सुंदर साथ को साथ लेकर के आया है, अब मैं उस तरह से बन के चलूंगी, इसलिए बुंदेलों का कोई भी लोक लाज मर्यादा अब पालन नहीं होगी। इसलिए
त्याग उन फांस के फंदों से जिससे राम नहीं बचा सके बल्कि खुद फंदों में फंसे रहे। और नाम क्या कहलवाया? मर्यादा पुरुषोत्तम। इन्होंने आके सारी मर्यादाओं को काटा, लोक लाज को काटा, बिरादरी के बंधनों से छुड़ा करके हमारी आत्म को निर्मल करके जब चरणों में ले लिया तो वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर। शोभा वर्णी ना जाए सिंहासन आसन इसलिए बैठा रहूं, छत्र साल गंगाए मैं इनकी अंगना हूं और ये मेरे धाम के धनी है। किस शास्त्र में लिखा है कि पत्नी अपने पति पर कुर्बान ना हो और आफ्टर मैरिज वो अगर अपने मायके को छोड़ती नहीं है। जो लड़की आजमा करके यहाँ भी अपने जीवन में देख ले, जो शादी के बाद हर वक्त चिंता पेकिया जी रखेगी वो कभी भी ससुराल में सुखी हो ही नहीं सकती। जब हमारा संबंध वहां से टूट गया तो मायके वालों के साथ केवल उतना ही संबंध होना चाहिए जैसा लोक कचहरी, बस दैट्स ऑल। वो सदा सुखी रहेगी। और जो शादी करा करके हर वक्त आए मेरी छोटी बहन आई पता नहीं बड़ा अनुखी हो गया, ना देवर की चिंता, ना दिरानी की चिंता, ना जिठानी की चिंता, ना सास ससुर की चिंता, माँ बाप की ही चिंता है, वो हमेशा लड़की दुखी रहेगी। इसलिए छत्रसाल जी कहते हैं कि आज से मेरा नाता संसारक बरादरी खानदान लोक लाज मर्यादा से कट गया। मेरी आज शादी मेरे आत्म के धनी के साथ हो चुकी है, इसलिए सिंहासन आसन बैठा रहूं छत्रसाल गनगाऊं। तब जो है बस ये पहचान अच्छी तरह से सबके संशय जब मिट गए, वायदे गए सारे खुले। अब क्या जवाब दें छत्रसाल जी को? जब गीता से, भागवत से, रामायण से, शास्त्रों से, सब ग्रंथों से पहचान करा दी के पार ब्रह्म अक्षातीत जो है वो आत्मा का धनी है और आत्मा माया के बंधनों में आकर के जो पड़ी हुई है, फंसी हुई है, उनको छुड़ाने की शक्ति अक्षातीत के बिना और किसी के पास है नहीं। उन्होंने हमें आकर के छुड़ाया है। अब छत्रसाल जी तिलक पूजन करने के बाद आरती में कुछ तो रखना चाहिए ना, खाली आरती तो नहीं करनी चाहिए। खजाने की चाबियां तीनों रानियों को बुला दी, आ जाओ भाई। और अपना शीश कहने गए, मेरे धनी माया में आके ये मेरा दहेज है जो मैंने दुनिया में कमा रखा। ये तो है खजाने की चाबी, ये है मेरी लोकलाज तीन रानियां और ये मेरा शीश है, यही मेरा टीका और यही मेरा पावड़ा, यही मेरा चंदन है और यही मैंने आके दुनिया में आपसे बिछड़ के कमाया है, वो अब आपके चरणों में है। आप जानो आपका काम है। श्री प्राणनाथ जी के चरणों पर ये छत्ता जो है अब बल बल है, चाहोगे तो शीश उठेगा नहीं तो यहीं कट सकता है। मेरा पना के मैं छत्रसाल हूँ अब मेरे में नहीं। वो छत्रसाल जो राजा था मर गया, छत्रसाल नाम उठ गया। अब जो हुक्म करोगे ये तन सो आपका है, जो चाहोगे सो ही होएगा। और अब लगे आरती जलाने तो सिंहासन पे तो बैठे थे स्वामी जी और महारानी जी बैठे थे नीचे, क्योंकि आज दिन तक किसी भी सुंदर साथ ने लाल दास जी समेत युगल जोड़ी की आरती कभी उतारी नहीं थी। ये कारण था जो छत्रसाल जी को अमीरुल मोमिन कहा और सबका सिरदार बना उनकी पहचान में, क्योंकि बड़ा कौन जो अपने धनी की पहचान करे। और कुर्बानी जो लाल दासी ने की है सुंदरता जी 12,000 में से ना किसी ने की ना कोई कर सकता है, लेकिन फिर भी बड़ा छत्रसाल क्यों हो गया? क्योंकि जब आरती लगे करने तो स्वामी जी के साथ हाथ जोड़ के कर दिया कि स्वामी जी तेरी कुबरी जी को साथ बिठाइए। स्वामी जी का ये नहीं हो सकता। क्यों लगे छत्रसाल जी से बात कर रहे हो? स्वामी जी बताओ परमधाम में सिंहासन पे एक बैठते हो कि श्यामा जी के साथ बैठते? या तो कह दो आज के बाद सिंहासन परमधाम में जाके श्यामा जी को साथ नहीं बिठाऊंगा। तो यहाँ तुम परदेश में आ गए हो तो ये मतलब थोड़ा है कि श्यामा जी हमारे सामने नहीं, परदेश में ही तो आ गए हैं। तो परदेश में अगर एक बहन भाई यहाँ इंडिया में पति पत्नी है तो फॉरन में अगर चले जाए तो वो बहन भाई हो जाएंगे। स्वामी जी आप क्या बात किससे कर रहे हो? मेरी आत्म ने पहचाना है। श्री ठकराणी जी संगले पधारे मेरे घर, जब तक श्यामा जी तेजकुंवरी जी को साथ नहीं बिठाओगे तब तक छत्रसाल आपकी आरती नहीं उतारेगा। आप अधूरे हो, इनके बिना मैं अधिक एक अकेले की आरती नहीं उतारूंगा। अब आपने स्वामी जी के पास क्या जवाब दें? और फिर शास्त्रों से प्रमाण दिया कि स्वामी जी आपने ही गीता भागवत वेद शास्त्र पढ़ाए हैं कि परम धाम में युगल स्वरूपम विमलम अचलम द्वंद्वातीतम सदृशम। जब हमारे आने से पहले तुमने शास्त्रों में लिखवा रखा है कि परम धाम में अक्षातीत युगल स्वरूप है तो मैं एक की आरती क्यों उतारू? बिठा इनको साथ, श्री छकराणी जी को साथ सिंहासन पे, तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल कर प्रणाम का चंदन किया, पूजन किया, फिर दोनों की आरती कंचम थाल चौदा जो है ये आरती उतारी गई सब सुंदर साहब के बीच में। समय ना सुंदर साहब जी एक बात को युगल ध्वनी अकेले के नहीं युगल स्वरूप बिछा के तब उनकी जो है आरती उतारी। स्वामी जी को छत्तर साल कह रहे हैं, छत्तर साल कहते हैं स्वामी जी किससे बात कर रहे हो? छत्तर साल से ना मैंने तुम्हें पहचान लिया है, शरीर यहाँ का है ना और तो कुछ नहीं, लेकिन बुद्धि आपने हमें कौन सी दे दी है? परम धाम वाली। अब मेरे पास अकल दुनिया वाली नहीं है कि मैं और जो भेष बदल के मूर्ख की धर के आ गया था। अब मैंने तुम्हें क्या पहचाना है कि तुम साक्षात अक्षरा चीज हो, मैं चीना तुम्हें अच्छी तरह से ठोक बजा करके पहचान करके चतुर साल ने तुम्हारी आरती उतारी। मैंने पहचान लिया है कि तुम कौन हो और श्री ठकुरानी जी श्यामा महारानी जी और संग सुंदर साहब को लेकर के जगाने के वास्ते हमें यहाँ पर आए हो। मेरे घर इसलिए तो आए हो और करने क्या आए हो? तुम्हें श्यामा जी की आरती ना उतारू ये कैसे हो सकता है?